أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ایک بہت ہی اچھی کاز کے لیے جمع ہونے کا موقع دیا بہت اچھا لگ رہا ہے آپ میں سے میرے حالے ساری ہی سسٹرز میرے لیے نئی ہیں اور میں بھی آپ کے لیے نئی ہوں لیکن قرآن اللہ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سب کے لیے نئے نہیں ہیں تو میں کوئی نئی بات نہیں کروں گی صرف اپنے اور آپ کے لیے آنے والے رمضان کے لیے ذہنی تیاری کے لیے ہم کچھ باتیں آج کریں گے یعنی آپ اس کو ایک ٹاک سے زیادہ بس ایک ریمائنڈر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب کیسے اس آنے والے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو کام تیاری کے ساتھ کیا جائے اس میں اور بغیر تیاری کے کسی کام کے کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو شروع کروں گی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آپ سب کو اللہ نے پکار لیا پتہ نہیں آپ کو پتہ چلا کہ نہیں یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتب علیکم الصیام تم پر روزہ فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ فرض کیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کیوں فرض کیا گیا پرپس مقصد لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو تاکہ تم تقوی اختیار کرو آیت 183 سورۃ البقرہ کل شام جو ہمارا ڈنمارک میں ایک لیکچر تھا اس پہ ہم نے تھوڑی بات کر لی آپ میں سے جو ساتھی ظاہر ہے وہاں نہیں تھے سننا چاہیں تو آپ نور القرآن ٹی وی جو ہمارا آفیشیل ایک چینل ہے ایک ہی چینل ہے آفیشیل NURULQURAN TV اس پہ سن سکتے ہیں اس میں ہم نے بیسیکلی یہ دیکھا تھا کہ روزہ یا سیام اصل کانسیپٹ کیا ہے اور ہم مسلمان آج کیا کرتے ہیں کئی لوگ گھبراتے ہیں کئی کچھ کرتے ہیں آج ہم بات کس پہ کریں گے تیاریوں پہ جب بھی رمضان قریب آتا ہے تو ہم دو طرح سے پر تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں ایک ذہنی اور ایک جسمانی عام طور پہ تو آپ دیکھیے کہ رمضان کی تیاریاں عموماً سموسے بنا کر فریز کرنے چنے ابالنے بیسن لینے اور اسی طرح کی کافی چیز چٹنیاں بنا لو اچھی بات ہے اگر آپ کو واقعی ان سب چیزوں کا شوق ہے اور ضرورت بھی ہے تو رمضان کی ان قیمتی گھڑیوں میں یہ کچھ کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے پلان کیا جس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہمارے ہاں عموماً کھانے پینے کا سن کر ایک دم آ جاتا ہے گناہ گار پھر چھپ کے کھانا پڑتا ہے نیک لوگوں کو اور ان کے کھانے پینے کو لوگ بدنام بھی بہت کرتے ہیں لطیفوں اور شعروں کی صورت میں تو یاد رکھیے کہ کھانا پینا کوئی گناہ نہیں ہے قرآن کا حکم ہے آپ دیکھیے کہ ہم سب اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر ذرا سا سوچیں کہ اللہ کا قرآن صرف ہمیں نماز روزہ سکھانے کے لیے نہیں آیا یہ ہمیں جینے مرنے کا ہر طریقہ سکھانے کے لیے آیا ہے تو کھانا پینا یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے قرآن میں کئی جگہ آتا ہے کلو وشربو یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات تو گناہ کیسے ہو گیا یہ تو امر ہے ڈوز میں سے ہے انٹروگیٹو ہے جیسے آپ کہتے ہیں صلوا نماز پڑھو اسی طرح سے کلو کھاؤ مقصد نہ بن جائے یہ چیز ابھی جب میں نے بات چھیڑی کہ ہمارے ہاں عموماً رمضان کی تیاری یہ ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ صرف یہی رہ جاتی ہے اور خواتین روزے رکھ رکھ کر بیچاریاں افطاریاں بناتی ہیں وہ بھی کوئی بری بات نہیں تھی آتے متعام کھانا کھلاؤ بہترین نے کی آپ کہتے ہیں کوئی باہر فقیر آئے گا تو اس کو ہی آپ کو کھانا دیں گے تو اجر ہوگا تو یہ جو بیچارہ غریب روز آتا ہے اور روز جاتا ہے آپ کے گھر شوہر غریب نہیں ہوتا فقیر نہیں ہوتا وہ بیچارہ آپ کی ہیلپ کے بغیر کوئی ایک روٹی بھی بنا سکتا ہے کیا جو بچے اسکولوں سے پڑھ پڑھا کر آتے ہیں کیا وہ ضرورت مند نہیں ہوتے صرف نیت کی بات ہے لیکن جو بات فکر کی ہے خطرناک ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم اس کو مقصد بنا لیں نمازیں چلی گئیں پکوڑے بناتے بناتے مغرب کی نماز گئی تو گئی اور آپ کھانے سمیٹ رہے ہیں اور آپ تو روزہ رکھوا رہے ہیں آج افطاری ہے آپ کے گھر میں اور 20-30 لوگ آ رہے ہیں اس لیے میں تو روزہ ہی نہیں رکھ سکتی یہ گڑبڑ ہے اور جب آپ عید کی تیاریوں کے کپڑوں کی صورت میں آپ یہ ساری عبادات کا وقت بازاروں کی زینت بن جائیں یہ مسئلہ ہے آپ دیکھیں کھانا پکتا ہے مثال دیتی ہوں عموماً جس سے آپ کو بھی فائدہ مجھے پلاؤ بناتے ہیں کیا پلاؤ نمک کے بغیر بن سکتا ہے نہیں بن سکتا چاولوں کے بغیر بن سکتا ہے चिकन के बगैर बन सकता है? हाँ, चिकन के बगैर बन जाएगा, आप कुछ और डाल लेंगे। अब खाने में नमक की मिसाल लीजिए, नमक के बगैर पुलाव क्या खाना? लेकिन आप 1 चम्मच की जगह 10 चम्मच डाल दें तो खाएगा कोई वो पुलाव? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दैट इज लाइफ। हिकमत भी यही है, जिस चीज का जितना हिस्सा है उतना रखिए। हमारा तो हर रोज का खाना इसी मिसाल से गुजरता है कि अगर अच्छा कॉम्बिनेशन रखते हैं, नमक मिर्च सब कुछ, तो आपका खाना बहुत लजीज होगा। और उसी में कोई एक चीज की कमी बेशी हो जाए तो सारे उसी को डिस्कस करते हैं। तो जिंदगी में खाने पीने को नमक की जगह पे रखिए, और अपनी नियतों को, अपने मामलात को अल्लाह से जोड़कर आखरत के लिए करने को ऐसे रखिए जैसे चावल। 2 गिलास पकाएंगे तो बड़ा पतीला बन जाएगा, 3 बनाएंगे तो उससे भी बड़ा बनेगा। तो मेन इंग्रेडिएंट चावल है। चावल कम ज्यादा होंगे तो ज्यादा लोग खाएंगे, कम खाएंगे, फर्क पड़ेगा। लेकिन अब उसमें आप ना होने वाली चीज को ज्यादा कम कर दें तो वो बात फर्क नहीं। तो आज हमारा असल में बैलेंस बिगड़ा हुआ है। आप में से बहुत सारी सिस्टर्स माशाल्लाह जानती हैं, हर दूसरे तीसरे पाकिस्तानी को शुगर है। तो शुगर तो हम सबको है, शुगर तो हर एक की बॉडी में है। आप में से अगर किसी ने साइंस पढ़ी है या आप मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं, हमारे जिस्म में चीनी ना हो तो क्या होगा, नमक ना हो तो क्या होगा? ये बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना क्या है? आपका रेशियो प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है। यानी शुगर एक बीमारी के तौर पे क्या है कि जब आपकी चीनी का बॉडी में बैलेंस खराब हो जाता है, मिसाल है वो 3% होनी थी, वो 20 पे चली गई या वो 1 पे चली गई। कभी आप सुनते हैं शुगर लो हो गई, कभी कहते शुगर हाई हो गई। तो जो सही सेहतमंद लोग हैं उनकी चीनी उतनी है जितनी होनी चाहिए। तो क्या पता चला कि जिंदगी में जिस चीज की, जिस मुकाम, जिस बंदे की जितनी हैसियत है, वो हमारे लिए जितना अहम है, उसको वहां रखिए। दैट इज लाइफ। हम रिश्तों के मामले में भी इसी में गड़बड़ करते हैं। वो लोग जिनको लोग कहते हैं, वो बंदा जो घोड़े पे बैठने के काबिल नहीं होता, हम उसको सर पे बिठा लेते हैं, सर पे सवार कर लेते हैं उन लोगों को जो किसी और जानवर पे सवार होने के भी काबिल नहीं होते हैं। लोग 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 हमारा मसला होता है। तो क्या सारी इन बातों से पता चला कि रमजान बहुत अहम है, और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिस चीज की जितनी कदर होती है उतनी ही उसकी तैयारी होती है। शादियों की कदर है हमारे कल्चर में बहुत 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 ज्यादा। मेरा सांस टूट गया, माफ कीजिएगा, मुझे कम से कम एक 10-20 सेकंड तक सांस लंबा खींचना था कि बहुत कदर है। तो फिर 6 माह, साल, 2-2 साल भी बाद शादियों की डेट चलती हैं, तैयारियों पे, तो क्योंकि कदर बहुत है। और हम देखते हैं कि हमारे कल्चर में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह ताला इस रमजान की तैयारियों के लिए आपको मुझे ये एहसास दिलाता है, अगर हकीकत में तुम्हारे लिए रमजान बहुत कीमती है तो तुम इसकी बहुत तैयारी करोगे। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कहकर अल्लाह हमें फर्ज की याद दहानी कराते हैं। कुतिबा फूरी दा के मानों में होता है, यानी ये कोई चॉइस नहीं है, इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स कंपल्सरी। अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस रमजान को इस तरीके से रख दिया कि तुम इससे भरपूर फायदा उठाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में ही सहाबा कराम को इकट्ठा करते और खुतबा देते, जिस महीने रमजान की आमद की खुशखबरी सुनाते थे और रमजान की फजीलत और अहमियत के बारे में बताते थे। तो ये बात कहना या किसी को बताना कि देखो रमजान आने वाला है, तुम उसकी तैयारी कर लो, क्या बताता है? कि वो रमजान अहम है। बल्कि इस पे अबू दाऊद की एक रिवायत है 1371 नंबर की, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने उस रिवायत को हम तक लाए हैं कि अल्लाह के नबी बगैर ताकीदी हुक्म दिए रमजान के क्याम की तरगीब दिलाते, फिर फरमाते कि जिसने रमजान में ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से, दो चीजें याद रखिए, ईमानम व एहतसाबन, ईमान की हालत हो, गैर मुस्लिम रोजा रख ले, अजर तो नहीं है, अकाउंट ही नहीं खोला तो पैसे कहाँ जमा हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही नहीं फिल किया तो आपके बच्चे को स्कूल में, क्लास में बैठने और इम्तिहान देने की इजाजत कैसे मिले? तो ईमान की हालत लाजमी है, और सवाब की नीयत से क्याम किया तो इसके साबिका गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो क्या पता चला कि हमारे पास बहुत ही खूबसूरत महीना आने वाला है। और आप भी और मैं भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना हम पहले से किसी भी चीज के लिए तैयार होंगे उतनी वो चीज हमारे लिए खैर का जरिया बनेगी। आप देखिए कि आप किसी भी चीज, कोई अपनी जिंदगी का कोई ऐसा मामला देखिए जिसको आप अपनी जिंदगी में याद रखते हैं। आप बैठी हुई थी और एकदम आपकी दोस्त आ गई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, कहाँ जाना है, फलां शादी पे जाना है। अब आप ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे, वो आपको जबरदस्ती घसीट के भी ले गई, वहां पूरा वक्त आप कॉन्शियस रहेंगे, मैं बगैर तैयारी के आई हूँ, ये शादी में नहीं, मैंने वो कपड़े नहीं से पहने, वो देखो ये है वो है। हालांकि आप शादी में गए हैं, आपको सब कुछ वो वहां मिल रहा है जो दूसरे जो दो दो घंटे की तैयारी के बाद आए होंगे, लेकिन आप इंजॉय नहीं करते। तो जब भी रमजान आता है, जैसे कि आने वाला है, क्या मैं जिंदा होंगी, क्या आपको धड़का लगता है? कभी आपकी जिंदगी में कोई बहुत करीबी अपने प्यारे की शादी का मौका गुजरा हो तो आप दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह हम जिंदा रहें। बाद लोग बुजुर्गों को दुआएं देते हैं, ये अपने बच्चों की खुशियां देख लें, पोतों की शादियां देख लें, और जितने दिन थोड़े रहते हैं ना तो बंदा कहता है अल्लाह कोई मसला ना हो जाए। आप पहले तो अपने आप को देखिए, अरे अल्लाह मुझे जिंदा रखना। आपको था कि रमजान रमजान तक कफारा होता है, सही मुस्लिम की रिवायत है 552, एक रमजान से दूसरे रमजान के बीच के जो गुनाह है ना वो माफ कर दिए जाते हैं, बशर्ते कि इंसान कबीरा गुनाहों से बचे। जितना इंसान कबीरा गुनाहों से बचता है, अल्लाह ताला एक रमजान के रोजों के बाद अगले रमजान के रोजों की वजह से बीच पूरे साल के गुनाह माफ कर देता है। आप जरा मैं अपने सोचें, हमारे गुनाह हैं पिछले से लेकर इस रमजान तक कितने गुनाह किए मैंने, हम तो गिन भी नहीं सकते। जैसे अल्लाह कहते हैं ना, वइन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, तुम तो अल्लाह की नेमतें गिन भी नहीं सकते, तो क्या हम अपने गुनाह गिन सकते हैं? चलिए, नेमतें तो रब ने दी, तो जवाब में हम क्या करते हैं? कोई बहुत ही नेक आलिम थे तो वो कहा करते थे कि इब्ने आदम, हर रोज जब सुबह होती है तो अल्लाह तुझे कितनी नेमतें देता है, यानी तू जिंदा उठा, सूरज निकला, रोशनी थी, तेरे नसीब का रिस्क उतरा हुआ था। यानी आप सोचिए ना, जब हम सुबह उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना वइलैहि नुशूर, तो उसके साथ एक पूरी मशीनरी नहीं तैयार हो जाती हमें सर्व करने के लिए, हर वो चीज हमारी वहां मौजूद है। लेकिन कहते हैं कि सोचो, जब वो दिन खत्म होता है तो तू उसके बदले में क्या भेजता है अल्लाह को, तू क्या भेजता है? कल का दिन ज्यादा दूर नहीं जाए, क्योंकि हमें कहाँ याद रहती हैं ये चीजें, सिर्फ यस्टरडे। कल का दिन हफ्ते का दिन था ना, आज इतवार है, कल का दिन सिर्फ, मैंने उस एक दिन में कोई गुनाह किया? आप कहते हैं आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता मैंने किया कि नहीं किया, और कैसे करते हैं और क्या करना है और क्या होता है और कैसे होता है। आप देखिए कि जब बंदे की फितरत सलामत होती है ना, जब वो बहुत ज्यादा हकीकत में नेक होता है, तो उसका अपना हर गुनाह चुपता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि कुछ लोग बड़े सफाई पसंद होते हैं, उनको बिस्तर की एक सलवट भी बेचैन कर देती है, फ्लोर पे गिरा हुआ है एक रोटी का क्रम भी वो कहता है हाय ये कर। कुछ औरतों का, गरीबों का, बेचारियों का यही मसला रहता है ना, हर वक्त वो इन्हीं चीजों में खोई रहती है कि हमने क्या किया। तो आप देखिए कि जितना ज्यादा आप इन सारी चीजों को अपने सामने रखते हैं ना, तो आपको ये चीजें समझ आने लग जाती हैं। अब होता क्या है कि जब आपकी सेंस खत्म हो जाती है नेकी और बदी की, उस वक्त आपको अपने गुनाह याद नहीं रहते। सहाबाए कराम में से हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु सबसे आखिर में फौत होने वाले सहाबी थे। यानी अगर मैं बहुत ही प्यार से कहूं कि दौरे सहाबियत जिस हस्ती पे खत्म हुआ, और हम सब जानते हैं सहाबी उनको कहते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी को देखा, दौरे सहाबियत जिस सहाबी पे पूरा होता है वो हजरत अनस है। अल्लाह ने तकरीबन 100 साल की इनको उम्र दी थी, और अल्लाह के नबी की दुआ लगी थी, खिदमत करते थे आपकी। अल्लाह के नबी जब मदीना तशरीफ लाए तो इनकी वालदा जो उम्मे सुलैम थी वो इनको अल्लाह के नबी के पास ले आई, 10 साल की उम्र थी इनकी, बच्चा 10 साल का क्या होगा, कहने लगी कि अल्लाह के नबी इस बच्चे को अपने पास रखिए, ये आपकी तरबियत में रहेगा, आपकी खिदमत भी करेगा, आपसे सीखेगा। बारहा इन्होंने अल्लाह के नबी से दुआएं ली, और नतीजा क्या हुआ कि जब दुनिया से गए तो कितने इनकी नस्ल में हुफाज थे। वो कहा करते थे कि लोगों, अब आप सोचिए ना, बिल्कुल नबी के करीब का दौर था ना, वो कहा करते थे कि लोगों वो गुनाह जिनको हम नबी सल्लम की जिंदगी में हलाक करने वाला सोचते थे, मुहलिकात, तुम लोग उसको नाक पे मक्खी की तरह उड़ा देते हो। तो इमेजिन कीजिए ना, इट्स ओके, सब करते हैं, देखा जाएगा, हैव अ फन, इट्स ओके, आई विल डू उमरा लेटर, मैं सदका दे दूंगी। आप इमेजिन कीजिए ये एटीट्यूड क्या है, आई डोंट केयर। एक बंदा होता है गुनाह करता है, ये जो लफ्ज है ना लअल्लकुम तत्तकून, इस पे कल भी बात हुई है, इसे लास्ट लेक्चर जो हमारा रात को आया है, कि जिसमें हम तकवा की बात करते हैं, हमारे जहन में लफ्ज मुत्तकी के साथ क्या आता है, बड़ा नेक परहेजगार, मर्द है तो उसका मुस्लिम अटायर है, दाढ़ी है, शलवार टखनों से ऊंची है, नजरें झुकी हुई है, यानी बड़ा डिसेंट इंसान। और औरत है तो पूरे ए टू जी निकाब और हिजाब में। हालांकि मुत्तकी कौन है? जिसके अंदर अपने गुनाहों की तड़प लग जाती है। आई एम डर्टी, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। रमजान ये करने आता है। लोग कहते हैं रमजान के बाद लोग आलिम फाजिल और मुफ्ती और शेख बन जाएंगे। नहीं बनेंगे, आप नहीं बने आज तक, वो कहाँ बनेंगे? आपने इतने साल कुरान पढ़ सीखकर अपने अंदर क्या तब्दीलियां रखी जो दूसरे रखेंगे? मुत्तकी वो होता है जो खुद को चेंज करना चाहता है। जब आप स्वेटिंग में आ जाते हैं तो आपका दिल नहीं करता शावर ले? जब आप शावर लेते हैं तो आपको एकदम सफाई की फीलिंग आती है ना? बिल्कुल वही कैफियत एक ईमान वाले की गुनाहों को करने के बाद महसूस होती है कि मैं गंदा हो गया। गुनाहों की बू होती है, आपको पता है। हदीस में आता है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बू से रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। गुनाहों की वजह से इंसान रोजी से महरूम हो जाता है, दिल का सुकून चला जाता है, यानी नाफरमानियां बढ़ती जाती हैं। तो क्या पता चला कि रमजान का महीना वो है जो हमारे पिछले गुनाहों की माफी का महीना है। एहसास शुरू हो जाता है। आप देखिए कि जिन्होंने भी गार्डनिंग की है तो एक खास मौसम होता है किसी फूल के बीज को डालने का, और जो जमींदारी करते हैं उनको पता है कि गंदम किस मौसम में लगनी है, चावल किस मौसम में लगना है। बस वो मौसम बीत गया और आपने बीज ना डाला तो क्या होगा? सब पता है, पूरा साल रोएगा वो किसान। फिर वो बीज नहीं डाला तो अब चावलों की उम्मीद छोड़ दो, अब चने अगले साल देखना, आज इस साल नहीं लगेंगे क्योंकि तुमने चनों का बीज नहीं डाला। रमजान हमारी जिंदगी में एक चेंज लाता है। आप में से जितने लोग खुद को बहुत दीन से जुड़ा हुआ देखते हैं, कहते हैं या समझते हैं या कहते हैं हम बहुत नेक हैं, हम दूसरों को भी बताना चाहते हैं, हमारे दिल में बड़ी तड़प है, और कुछ बेचारे गिल्ट वाले हैं, वो कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो पता नहीं रोजे भी सही रख रहे हैं कि नहीं। हर लेवल के लोग होते हैं ना। आप इमेजिन कीजिए वो कोई रमजान ही था जिसने आपका दिल बदला था, या हज उमरा या रमजान और या कुरान, या कोई सदमा, कोई प्यारे की मौत, या कोई इतनी बड़ी खुशी जिसके ऊपर बंदा अल्लाह के आगे ही झुक जाता है। ये चार पांच इंसेंटिव होते हैं नेकियों की तरफ आने के। तो रमजान इज वन ऑफ देम। इस रमजान को जाने ना दीजिए। वो किसान जो बीज डालने के वक्त सोता रहे, खाता रहे, पीता रहे, घूमता रहे, इधर से उधर मजे मौजे मस्तियां करे, वो फिर बाद में जो मर्जी कह ले, फिर या तो अल्लाह कोई सदमा डालेगा तो फिर दीन की शौक आएगा। तो आपको मुझे इस वक्त रमजान की फिक्र करनी है। ये वक्त चला ना जाए, ये मौका हाथ से ना निकल जाए। और वी शुड बी जीनियस। दुनिया में एक सेल का साइन हमारी रातों की नींद उड़ा देता है। टाइमर लगाए होते हैं कितने बजे सेल शुरू होनी है, कहीं आपने नोटिफिकेशन दिए होते हैं, कभी कुछ हमें बताइएगा, रिमाइंडर्स हैं, हमें मैसेजेस आ जाए, हम बाहर जाए, बाहर लाइनें खड़ी होती हैं। ये जब आईफोन नया ईजाद होता है, आज से 4-5 साल हम पहले लंदन में थे तो पूरी रात लोगों स्टोर के बाहर खड़े रहे। शायद उस वक्त मेरा गुमान है कि आईफोन 6-7 आना था, लेकिन नया अनाउंस होना था। पूरी रात लोग बाहर थे कि सुबह स्टोर खुलेगा तो सबसे पहले हम जाएं, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट बता रहे हैं जी इतने आने हैं। तो नेकियां, एक नेकी आपकी 70 के बराबर, सुन्नत फर्ज के बराबर। मैं मसाइल नहीं यहां बयान करती, लेकिन सिर्फ बताने लगी हूं कि बाय वन गेट 69 फ्री, वन नहीं फ्री, बाय वन गेट 69 फ्री। आम दिनों का एक नफल आपको रमजान के 70 नवाफिल पे डाल दे, और क्या चाहिए? और फिर भी हम सोते रहे, फिर भी हम कहते हैं नहीं, कमाना है। मैं तो कहती हूं हमें अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के रमजान पे आ जाना, कि नहीं ये मेरा महीना है। और फिर आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान आ जाए तो उमरा कर लेना, क्योंकि रमजान का उमरा एक हज के बराबर होता है। ये बुखारी की रिवायत है 1782। हज तो कोई करे तो करे, कितना महंगा होगा, इधर से भी मुझे लगता है 40-50 हज़ार करोड़ तो होंगे ही ना, और फिर वो भी 2 साल अल्लाह ने बिल्कुल ही बंद कर दिए दरवाजे, तो अब कितनी एफर्ट के बाद लोग हज करेंगे। तो आपको अल्लाह ताला अगर उम्रे का मौका देता है तो जरूर लीजिए, लेकिन वो उम्रा भी वो जो उम्रा हो, वो हज पैकेज या उम्रा पैकेज में ही ना उलझने वाला हो कि कौन से होटल में रह रहे, टावर में रह रहे, कितना पैकेज, कितने वाला, फर्स्ट क्लास। हमारे बच्चे वहां भी जाकर तो मैकडोनल्ड और वो बर्गर खा खू के आते हैं कि देखो यहाँ हलाल मिलता है। ठीक है, कोई बुरी बात ना होती अगर रूहानियत कायम रहती। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ करते और फरमाते कि रमजान के आखिरी अशरे में शबे कदर को तलाश करो। ये बुखारी की रिवायत 2020 है क्या पता चला कि रमजान का महीना हमारी जिंदगी में बहुत सारी खैर और बरकत लेके आने वाला है। आज से नियत कीजिए, मैंने पहले भी शुरू में कहा था कि आज कोई लेक्चर नहीं दे रही, सिर्फ रिमाइंडर्स है 1 2 3 4। यानी अभी तक हमने जो बात की उसका खुलासा क्या है कि हमने पहले अपने जहन को तैयार करना है, अपने आप को वाइंड अप कीजिए, अपने घर को रैप अप कीजिए, एक्स्ट्रा चीजें जो आपकी तवज्जो लेती हैं उसको हटा दें थोड़ी देर, घर में पर्दे कपड़े जो भी बेड शीट्स हैं ऐसी डाल दीजिए जो पूरा महीना आपको कोई फिक्र ना हो, कपड़े भी आपने जो इस्तेमाल करने हैं उसको पहले से अलग कर लीजिए। फोकस कीजिए कि ये दिन, ये वक्त, ये बहुत कीमती वक्त है। किसी के पास लाखों हो तो उसमें जितना मर्जी खर्च कर ले, लेकिन अगर उसके सिर्फ 10,000 रह जाए तो उसको कितना सेंध सेंध के खर्च करेगा। तो ये गिनती के दिन है, अय्याम मादूदत, बड़े गिनती के दिन है। फिर इसी तरह आप देखिए कि रमजान का जब महीना आता है तो उसके बारे में सही बुखारी में एक बहुत ही प्यारी रिवायत है, 1902 है, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अल्लाह के नबी सखावत यानी बींग जेनरस और खैर के मामले में सबसे ज्यादा सखी थे। तो आपने फरमाया कि आपकी सखावत उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती थी जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमजान में मिलते। जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लम से रमजान शरीफ की हर रात में मिलते, यहाँ तक कि रमजान गुजर जाता और नबी सल्लम जिब्राईल से कुरान का दौर करते थे। ये है जी दौरे कुरान, यानी जितना कुरान नाजिल हुआ होता अल्लाह के नबी सल्लम उसको जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दोहराते थे। ये ऐसे जैसे आपके घरों में कोई बच्चा, कोई बड़ा, जो भी जो है वो कुरान हिफ्ज कर रहा है तो उसने अभी 6 पारे पढ़े हैं, तो आप कहते हैं चलो इन 6 पारों को दोहरा लेते हैं। हम लोग पिछले अल्हम्दुलिल्लाह ही बिनेमति ही ततिमु सालिहात पिछले साल 20 और 21 और अब 22 है, यानी पिछले साल हमारा नूरुल कुरान प्लेटफॉर्म से 20th दौरे कुरान था और इस साल इंशाल्लाह ये 21 होगा, यानी वो कहते हैं ना 21 सेंचुरी। तो हर साल हम रमजान में आप लोगों के लिए एक मुख्तसर सा कुरान पाक को सीखने का सफर शुरू करते हैं जो इंशाल्लाह इस साल भी शुरू करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना कि दौरे कुरान क्या होता है। देखिए दार यदीरु दौरन दायरा दार हम सब जानते हैं, दौर ऐसे घुमाना। पूरा कुरान यानी फातिहा से नाज तक हम एक दफा उसका तर्जमा लफ्जी ऑफ कोर्स नहीं कर सकते इतने वक्त में, हम उसका वो हिस्सा जो कि आप कह सकती हैं कि पूरा बामुहावरा तर्जमा होता है। आप लोग अपने घर में जो मुसफ जो कुरान आपके पास है, आपको अगर इवन उर्दू पढ़नी नहीं आती, इंग्लिश डैनिश या जो आपकी लैंग्वेज है, आपकी बच्चियां आप लोग, आप वो कुरान पाक लेकर बैठे, टाइम भी आप अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं। जो लाइफ जिस तरह, जैसे अभी मैं आज बात कर रही हूँ ऑनलाइन पे, तो देखिए ना कि इंसान जब भी सुनता है उसको लाइव ही लगता है ना। तो हमारे पास एक चैनल है जिसको हम नूरुल कुरान टीवी कहते हैं। नूरुल कुरान टीवी अगर आप खुद भी चाहें तो अपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकती हैं। एक लफ्ज़ बस आपने जहन में रखना है कि लफ्ज़ नूर के अंदर डबल ओ नहीं आता, अमूमन हम डबल ओ लिखते हैं NOOR, तो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें NUR है, यानी यू आपका, योर्स, 3 दफा यू है पूरी वेबसाइट के अंदर पूरे नाम में, NUR ULQURAN, ठीक है, और आगे T और V। अगर आप फेसबुक ज्वाइन करती हैं तो माई का लफ्ज लगा लीजिए, माई नूरुल कुरान है। आपको हर साल फातिहा से नाज तक का जो एक सफर मिलता है, हजारों नहीं लाखों लोग कुरान की इस शमा को अपने इर्द गिर्द अपने करीब महसूस करते हैं। शायद इस साल आपके लिए हो, जब एक दफा लाइव आ चुका तो उसके बाद आप उसको अपनी मर्जी से सुन सकते हैं ना। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको बहुत कुछ सुना दूँ बता दूँ, उससे बेहतर नहीं कि मैं आपको रास्ता ही दे दूँ कि आप मेरे उठने के बाद भी ये काम कर सकें, और आप लोग अपनी सहूलत का भी लेके इंडिविजुअली तो आप कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन ये जो बात मैं कह रही हूँ कि इस वक्त आपकी जो ये बात है ना कि आपका इस घर में बैठकर इस माहौल में सुनना, घर में अगर आप यही माहौल बना लेती हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, नहीं तो कहीं भी आप जमा हो सकते हैं और घर बेहतरीन होते हैं, रोजा भी होता है, वक्त भी गुजर जाता है, दिन भी अब लंबे हो रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ सुनेंगे और उसमें अमल की बातें होती हैं। इस दफा तुम्हारा टॉपिक भी दुआओं का है, पूरा महीना हमने दुआ की ताकत, पावर ऑफ दी दुआ पे बात करनी है, तो आप लोग सुनेंगे इंशाल्लाह, आपको खुद पता चलेगा, आप महसूस करेंगे कि आपके लिए क्या है। क्या हम अल्लाह के इस कलाम को जानते हैं इसमें क्या? आप डेनमार्क में रहती हैं, आप कॉलेज स्कूलों में जॉब्स में जहाँ भी नॉन मुस्लिम्स को मिलती होंगी, कभी कोई डेनिश सिस्टर कोई आपके कुलीग में से पूछ ले कि ये बताइए कि व्हाट्स इन योर कुरान, व्हाट गॉड टेल्स यू, कुरान में क्या है, कितना है, वो कौन सी सूरत है जिसमें ये है, तो क्या हम जानते हैं? मेरा पहला सवाल तो खुद अपने आप से ही होता है, जो हमेशा मैं दूसरों से फिर बाद में इसको पूछती हूँ कि जब कुरान पढ़ा जाता है, जब कुरान की तिलावत हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी कुछ ना कुछ कुरान तो पढ़ते हैं, और अमूमन हमारे यहाँ कल्चर है कि रमज़ान में एक कुरान पूरा करना है, रोज़ का एक सपारा। तो सवाल कीजिए, जब मैं कुरान पढ़ती हूँ तो मुझे समझ आता है, और जब तरावी में कुरान का एक पारा सुनते हैं हम लोग, समझ आता है? उम्रे पे अल्लाह आपको ले जाए, इमाम सुदेस हैं, इमाम आकिली हैं, इमाम शुरैम हैं, कोई भी हैं, वो जब तरावी पढ़ाते हैं तो क्या हमें कुरान समझ आ रहा होता है उस वक्त? तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। वो कहते हैं ना कि दोस्त की ज़ुबान तुर्की है, और तुर्की मुझे समझ नहीं आती। हमारा आज ये हाल है, इस कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ना है हमने, और ये बड़ा मुख्तसर सा सफ़र होगा। उसके बाद इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जिसके बाद आप इसको कभी छोड़ेंगे भी नहीं, और ये वो चीज़ है जो आपके लिए इतनी खैर के रास्ते खोल देगी। ये हमारा हक बनता है, हम मुसलमान हैं, हमने सारी दुनिया को ये कुरान देना था, और हमें खुद ही नहीं पता इसमें क्या, तो हम कैसे दूसरों को देंगे? फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप इस कुरान के साथ अपने आप को जोड़ेंगे ना, आपके दिल में खैर के बीज डलेंगे, खैर के रास्ते पड़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप इन सारी चीज़ों को करते करते एक दिन आएगा कि इसकी बरकत को लेंगे। रमज़ान के आने से पहले उसका मुकाम, उसकी अजमत की फजीलत, उसके पैगाम को जहनों में ताज़ा करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम इसकी बरकत से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने अंदर तकवा हासिल करें, जो कि रोजे का मकसद है। सूरत आराफ की आयत 96 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकु लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी वलाकिन कज्जबू फअखज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। किसको ये आयत समझ आई? मैंने भी अरबी बोली है, आप में से किसको ये समझ आई? इसमें तो कई लफ्ज उर्दू के भी हैं, उर्दू और अरबी में ये खूबसूरती है, बरकत का लफ्ज उर्दू में हम बोलते हैं, है ना, कसब का लफ्ज हम बोलते हैं, कमाई कसब, फतह ना फतह का लफ्ज बोलते हैं ना। हालांकि इस आयत में कहा क्या गया, अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोलते। इसमें देखिए अल्लाह का शिकवा, आज हमारे ऊपर अगर बेबरकती है, लोग कहते हैं पैसे में बरकत नहीं रही, वक्त में बरकत नहीं रही, रिश्तों में बरकत नहीं रही, बच्चे भी हैं लेकिन दिल खुश नहीं, मियां बीवी साथ हैं लेकिन दिल नहीं खुश, फैमिली बॉन्ड हमारा कमजोर हो रहा है, हर बंदा नफसा नफसी में। पहले जिसके बच्चे नहीं होते थे लोग उस पर रहम खाते थे, अब जिसके हैं वो कभी उसके पास है, वो उनकी अपनी दुनिया आपकी दुनिया। एक घर में बैठकर आप गैजेट्स के जरिए बात करते हैं कि बेटा आप किधर हैं, आवाज है यूट्यूब से, और वो क्या कहते हैं फेसबुक से, आपको पता चलता है कि बेटा साहब इस वक्त किधर है। एक ही घर में होते हैं और मियाँ बीवी मैसेजेस करके कह रहे थे अच्छा आप किधर हैं। हमारी एक सिस्टर थी, वो बड़े मजे से सुनाती हैं कि वो पता नहीं किस मुल्क में थी मैं, तो वो प्रोग्राम में आ गई, उन्होंने समझा मियाँ जॉब पे चले गए, मियाँ घर में थे, ये आ गई। जब आ गई तो दर्स के दौरान उनको अपने मियाँ के मैसेजेस आए, किधर है क्या है, एनीवे किस्सा मुफाद में पता चला कि मियाँ घर में ही थे, वो सो रहे थे, ये उठ के आ गई, उन्होंने उठ के बोला बेगम तुम किधर हो, अब ढूंढ रहे नहीं मिल रही, तो उन्होंने अपनी लोकेशन उसके साथ सेट की हुई थी, तो उसकी लोकेशन से उसको फाइंड किया कि वो तो कहीं वहां बैठी पार्टी खा रही है। अब ये भी वक्त आना था, है ना। असल चीज क्या है कि जितना ज्यादा हम कुरान सुनेंगे ना, हमें अपनी बीमारियों का पता चलेगा। जिसको बीमारी नहीं पता, उसको डायग्नोज नहीं कर सका, फिर उसका इलाज कैसे आएगा? हमें बिल्कुल मायूस नहीं होना अपने आप से। कभी कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैं तो बड़ी गुनाहगार हूँ, हाय मेरे पास तो कुछ भी नहीं। हालांकि कुरान सुनना ऐसे ही जैसे आप टेस्ट करवाते हैं, आपने MR करवाई होगी, कभी कभी एक्सरेज कराए होंगे, कभी आपने अल्ट्रासाउंड कराया होगा। कुरान का ये सफर इज जस्ट लाइक अ डायग्नोस्टिंग। आप डायग्नोज करेंगे मेरे अंदर अल्लाह का डर कितना है, मुझे अल्लाह से कितना खौफ है, उसे कितनी उम्मीदें हैं, फिर आप अल्लाह का जिक्र कितना करते हैं, और ये जो तकवा है ना, ये ऐसे ही नहीं आ जाता, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। आपने वेट लूज करना हो या गेन करना हो, कोई आसान काम है? बड़ा मुश्किल काम है, बहुत है, वो तो मुझे आपके चेहरों से ही लग रहा है। तकवा के लिए खुद को खींच कर लाना पड़ता है, अपने नफ्स को मारना पड़ता है। ऐसी थोड़ी कोई शैतान आपको छोड़ेगा, वमा उबर रही हो नफसी न नफ्स अल अम्मारा तुम बिस्सू। मैं तो अपने नफ्स को बेगुनाह नहीं करार देता, मेरा नफ्स मुझे गुनाहों की बुराइयों की दावत देता है। सरकशी है नफ्स में, और इसी को तो दबाता है रमजान। नफ्स पे पाँव रखता है बंदा, फिर ही रोजा रखता है। आप खाने के शौकीन, पीने के शौकीन, और आप मजे करें, रोजा कहता है नहीं, कुछ घंटे सब्र करो। तो रोजा आपके मेरे लिए बहुत कुछ है। तो अगर मैं अपनी बात को वाइंड अप करूं एक गो में, आप में रमजान की तैयारियां कैसे करें, अभी से खुद से पूछिए। कुछ चेकलिस्ट के तौर पे मैं पॉइंट्स बोलूंगी कि आप और मैं इस साल रमजान की तैयारी के लिए क्या करें। नंबर एक, अभी से नियत कर ले कि मैंने रमजान में टाइम वेस्ट नहीं करना। अपने टाइम वेस्टर्स को ढूंढिए, वक्त के जिया से आपने इज्तनाब करना है। इंटरनेट यानी जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं, एक्स्ट्रा यूज नहीं करना। हालांकि इस वक्त भी मेरी बात आप नेट के थ्रू ही सुन रहे हैं, अक्सर लोग जो बाहर सुन रहे हैं, आप तो इधर बैठे हैं, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। आपने अपने बच्चों को 20-20 हज़ार रुपए का फोन दे दिया, लेकिन आपको नहीं पता वो उसमें क्या देखते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं। आप मशीन दे दें और चलाना ना सिखाएं तो खतरा, गाड़ी दें और चलानी ना आए तो हादसा लाजमी है। तो अपने कंप्यूटर्स के इस्तेमाल को लिमिटाइज कीजिए, मसरूफियात में कमी करें। अब 20 से सोच लें, इस साल पूरे रमजान में मैंने ये चीजें कम करनी है। दूसरी बात है क़ियामुल्लैल, रात को थोड़ा सा जागने की, थोड़ी सी इबादत के लिए अभी से तैयार हो जाए। तो नफिल इस साल नियत कीजिए, मैंने पूरे महीने में तरावी नहीं छोड़नी। और अगर अपने इर्द गिर्द आपके कोई अच्छी किरत के साथ पढ़ाने वाले लोग हैं जहां मस्जिद, उसको चूज कीजिए। पूरी फैमिली के साथ चले, मियाँ और बच्चों को कहें हम इस साल फैमिली बेस्ड रमजान गुजारेंगे। कुरान पाक की तिलावत की नियत करनी है, फिर अपने कामों को ऑर्गेनाइज कीजिए। तंजीम औकात कहते हैं, डिसिप्लिन योर सेल्फ। फिर कामों को करने के वक्त मुकर्रर कर दीजिए, बस ये इतने वक्त में हो क्या तो हो गया। बस इफ्तारी की बात कहती हूँ, आपने इफ्तारी बनानी है, सबने बनानी होती है और बनानी चाहिए। आप नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, लेकिन एक टाइम रख लें। मसलन यहाँ शायद 8 बजे रोजा खुलेगा, शुरू के रोजे 8 o'clock के करीब मगरिब होगी, या मुझे नहीं पता आपका। हाँ, पहला रोजा 7:45 पे खुलेगा ना, नॉर्वे में मेरा ले 8 समथिंग हो चुके होंगे, वो जरा साहब से आगे। तो अब आप देखिए कि आप कह के बस मैंने 6 बजे जाना है किचन में, इट्स मोर देन एनफ। 2 घंटे थोड़े तो नहीं होते ना, पकोड़े कितने को बनाएंगे आप? क्योंकि जितना हम जल्दी जाते हैं ना, फिर हम पकोड़े बनाते हैं, फिर कहते हैं साथ चिप्स भी बना लेती हूँ, फिर चिप्स के साथ कहते थोड़े रोल भी फ्राई कर लूँ, दिल नहीं लग रहा। वो खेल रहे होते हैं ना खाना, कहते हैं ना दोस्त नहीं तो दोस्त की बातें तो करो, तो खा नहीं सकते तो खाने की बातें तो करो। आप बस एक टाइम रखें, फजर से 1-1.5 घंटा पहले किचन में जाना है, खत्म। और इफ्तारी मैंने टोटल 1-1.5 घंटे में बनानी है। और इसी तरह नफली इबादत का इहतमाम बंदा कर सकता है, सदका करने की आदत डालनी है, इंशाल्लाह बच्चों को भी सदका देने की आदत डालनी है। इसी पे एक लेक्चर है हमारा, बच्चों का रमजान। हम अपने यंग जवान होते हुए बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करें, उसमें बहुत सारी टिप्स दी गई हैं। पिछले सालों में एक लेक्चर हुआ था, अपने बच्चों को साथ लगाए, अपनी बेटियों को साथ लाइए। क्यों हम उनको अलग करते हैं, उनकी अपनी दुनिया आपकी अपनी दुनिया, वो रोजा रख के सोते रहे, ये क्या बात है? आप अपना कुरान सुन रही हैं, पढ़ रही हैं, और वो अपनी जिंदगी में नहीं। आज हमारा फैमिली बॉन्ड कम हो रहा है। अपने जवान बच्चों को, 10 साल से ऊपर के बच्चों को बताइए कि मस्जिद में जाके नमाज अदा करें, मस्जिद में एक नमाज के बाद दूसरी नमाज में रुक जाइए, बच्चों के हाथों से सदका दिलाइए। फिर जरूरत की जो चीजें एक ही दफा खरीद लें, यानी हफ्ते में बस एक नहीं तो मैक्सिमम 2 दफा ग्रोसरी आएगी, जुम्मे का, और उधर से आप ले लीजिए तो बुध का दिन रख लीजिए। बस जो आगे आगे नहीं है तो मैं नहीं यूज करूंगी, नहीं आपके पास दही तो आप टमाटर डालें, नहीं है टमाटर तो लेमन डालिए, ना डालिए क्या होगा। हम इतने टेस्ट कॉन्शियस हो जाते हैं कि 19-20 की चीज नहीं है, मारे मारे फिर रहे, और मर्द बेचारे आखिरी वक्त तक बाजारों में कि अच्छा ये नहीं बेगम मिल रहा तो वो नहीं मिल रहा। अपने आप को रखिए। प्लस एक छोटी सी चीज जो आप में से सिस्टर्स पहली दफा इधर मिल रही है, जिन्होंने पहले कोई नहीं सुना, अपने छुटे हुए कजा रोजे पूरे कीजिए। पिछले साल के अगर आपके फर्ज रोजे को छुट गए थे तो आप उनकी कजा इन दिनों में रखिए, ताकि आप एक फ्रेश अकाउंट के साथ अगला रमजान शुरू कर सके। फिर इसी तरह अभी से खाने की मिकदार में कमी कर दें, ड्यूरेशंस बढ़ा लें। सर में जो दर्द हो जाता है माइग्रेन, तो वो चाय अभी से कम कर दें। आप अगर चाहें ना तो आप बाद में देख लीजिएगा, तो प्ले लिस्टों में टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं। पिछले सालों में ये रमजान से पहले के लेक्चर्स को एक एक करके सुनना शुरू करें, आपको उसके अंदर एक ट्रेयर मिलेगा। उसमें पिछले सालों में ये एक एक चीज करके देखाई थी, हमने देखी भी थी कि क्या आदत में अभी से रमजान, कैसे मैं रमजान से पहले मेंटली प्रिपेयर रहूं। तो उसके लिए ये है कि जो रमजान वाले दिन होना है वो 1-2-4 दिन पहले कर लीजिए। वरना आप देखिए अक्सर लोग पहले रोजे में आखिर में बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं और नौसिया उनमें होने लगता है। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। कैलूला की आदत डालिए, दिन थोड़े लंबे हैं, जोहर के बाद या कोई ऐसा मुनासिब वक्त देखिए। प्लस आज से ही अपने घर में बैठकर बच्चों के साथ मिलकर रमजान की जहन साजी करें, प्लान करें, मेक देयर माइंड्स, ताकि ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो। और अल्लाह ना करे किसी के हस्बैंड सिगरेट नोशी करते हैं तो उन्हें कहें कि अभी से छोड़िए, ताकि आखिरी दिन छोड़ने से जो तबीयत पे बोझ आएगा तो इसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें। और दुआओं की कसरत, दुआओं के साथ अल्लाह मुश्किल कामों को भी आसान करता है। और एक बहुत मुश्किल नियत कर लें अभी से कि मैंने इस पूरे रमज़ान में गुस्सा नहीं करना, बच्चों पे यल नहीं करना, मियाँ से तेवरी नहीं डाल के बात करनी। करेंगे? नहीं हो सकेगा। अखलाक को बेहतर करना है, कोशिश तो कीजिए कि मैंने नाराज नहीं होना। आपके तो मासियां हैं नहीं ना इधर हमारे पास, पाकिस्तान में मासियों पे गुस्सा नहीं करना। अखलाक अच्छा रखे, हम रोजा रख ले तो मेरे लिए हमसे ज्यादा अजर हमारे साथ वालों को होता। अल्लाह के नबी एक सफर में थे तो एक शख्स को चारपाई पे लटा कर लोग पंखा झल रहे थे। कहा इसको क्या हुआ? कहा इसने रोजा रखा और हम इसकी खिदमत कर रहे हैं। तो फरमाया ये जो खिदमत कर रहे हैं इनको इससे ज्यादा अजर मिलेगा। ऐसा होता है ना। तो अपने आप को हमेशा रिलैक्स रखिए, खुद अपनी दोस्तों के साथ बात कीजिए। एक फ्रेंड्स के साथ जब मिलकर हम कोई काम करते हैं ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। और एक छोटी सी बात कि दिलों को अल्लाह के लिए फारिग करें, फैजा फरख्त फन सब। अल्लाह अपने नबी को कहते हैं जब वो फारिग हो जाए ना फिर मेहनत करें। तो जब दिल से दूसरी चीजें निकलती हैं तो फिर दूसरी चीजें हमें अच्छी लगती हैं। और इसी तरह अपने घर के जाए नमाज है उनको फ्रेश कर लीजिए, खुशबू लगाइए, धो ले फ्रेश। हमें ये नहीं कह रही कि नए खरीदने चल पड़े, ये तो हम मौका ढूंढते हैं शॉपिंग का। तो जो घर में अच्छी सी चीजें उनको के अपने घर का एक खास कोना यानी एक कमरा, जैसे कोई भी प्लेन रूम है उसको इबादत के लिए बनाइए। उधर बैठे आपको स्पिरिचुअलिटी फील होगी। कमरों की तरतीब थोड़ी बहुत सामान की बदल दें, बेडशीट साफ पहना, यानी स्पेशल फीलिंग आए, कुछ स्पिरिचुअलिटी भी आए। और खास तौर पे वही बात के कयामत के दिन आपका पूरा घर आपके लिए गवाही देगा कि आपने यहाँ बैठकर इबादत की थी। और इसी तरह से एक आपको छोटी सी टिप ये दे सकती हूँ कि एक सेविंग बॉक्स बनाएं घर में, खुद भी और बच्चों से रोज उसमें कुछ सदका डलवाइए। आप देखेंगे महीने के एंड पे वो कई हजार हो चुका होगा। कुछ ना कुछ डालते जाएं और उसको इंशाल्लाह आपने जहां आपको लगेगा कि आपके लिए ये बेहतरीन सदका जारिया बनता है उसको बनाएं। पाकिस्तान में अगर आपके गरीब रिश्तेदार हैं, कोई मुलाजिम है, तो उनको भी सईद के कपड़ों वगैरह को और इन चीज़ों के लिए कुछ खर्च पानी दे दीजिए, ताकि वो रमज़ान से पहले ही इन चीज़ों से फारिग हो जाएं। और एक छोटी सी नियत करें, कोई एक छोटी सी सूरत इस साल हिफ्ज करूंगी, चाहे वो इन्ना आतना कल कौसर को ठीक कर लीजिए, सूरत असर को कर लीजिए, लेकिन कोई एक नई सूरत जो आपको बड़ी अच्छी लगती है। अल्लाह सेहत करे और कसरत से इस्तगफार करें, क्योंकि कई दफा हमारे गुना जो है ना वो हमारी नेकियों के रास्ते में रुकावट बनते हैं। फिर एक छोटी सी आप नियत करें, रोज अपने दोस्तों साथियों घर वालों में से कुछ के लिए दुआ करनी है। यानी मिसाल है, मैं अपने तीन रिश्तेदारों के लिए आज दुआ करूंगी, फिर तीन के लिए कल, फिर परसों, पूरे महीने का प्लानर बना ले। कुछ तो फर्स्ट रिलेशन होते हैं ना, बाप बाप, भाई बहन, उनके लिए तो बंदा रोज करता है। कभी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को भी तो याद कीजिए ना, उनके लिए आप दुआएं करें। दूसरों से भी कहिए कि आप हमें अपनी दुआओं में शामिल रखें। आप देखेंगे कि इसका इतना अच्छा नतीजा निकलेगा कि आपका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होगा, मैनेज हो जाएगा। और इसी तरह से एक छोटी सी नियत कीजिए कि फजर से नमाज से लेकर सनराइज तक मैं जायनमाज पे बैठी रहूंगी। उसी में आप अपना सपारा भी पढ़ सकती हैं, आप कई काम कर सकते हैं। और इसी तरह तस्बीह हाथ में लिए बगैर आप अपने बगैर गिने भी अल्लाह को हर वक्त याद कर सकते हैं। और इसी तरह खुद भी अल्लाह से जुड़ना है और दूसरों को भी अल्लाह तआला से जोड़ना है। कुरान पाक की तिलावत भी करनी है। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी को आसान बनाएं, शादियों को आसान बनाएं, घरों को आसान बनाएं। हमने अपनी जिंदगियों को बहुत ज्यादा अपने ऊपर सवार कर लिया। और कबूलियत के औकात हैं जो, उनमें दुआएं कीजिए, अल्लाह मुझे दीन में इस्तकामत दे। सहरी और इफ्तारी में आज आप देखिए कि हर मीडिया कुछ ना कुछ पेश कर रहा है। ये भी एक छोटा सा एक तो अच्छी चीज है कि मीडिया में जहां आपको और बहुत कुछ मिलता है वहां अच्छे ट्रांसमिशन मिले, लेकिन सिर्फ वही दीन का सोर्स ना बन जाए, उसमें भी वही चीजें आप सुने जिससे आपके अंदर दीन की मोहब्बत आए। कभी कभी हम सिर्फ मतलब कुछ चमकती चीजों से खुश हो जाते हैं। तो हर चीज को खास तौर पे आप देखिए, ये औकात होते हैं दुआओं के, और हम उस वक्त टीवी खोलकर बैठे होते हैं, अब बीच में एडवर्टाइजमेंट चल रही, औरतें आ रही, म्यूजिक की आवाजें हैं, वो स्पिरिचुअलिटी कम हो जाती है। और फिर ये दुआ करें कि मेरा ये रमजान पिछले सारे रमजानों से बेहतरीन रमजान हो, ख्वाहिशात पे काबू डाले। रोज कहें कि मैंने आज अपनी किसी एक ख्वाहिश पे काबू पाना है। और याद रखिए, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन ये महीना इफ्तार पार्टियां करने का नहीं है, ये सैर सपाटे और ईद की शॉपिंग करने का नहीं है, ये अल्लाह से ताल्लुकात बढ़ाने का, अल्लाह से बेहतरियों का है। आपने इफ्तारी करानी है, आप वैसे कराइए, गरीबों को दीजिए, अपने फैमिली के लोगों को भेज दीजिए घर में। अल्लाह के नबी चार चीजें बिल्कुल कम कर देते थे रमजान में, जिसमें कसीरुल इख्तलात था, सोशलाइजिंग नहीं करते थे, क्योंकि वतबत्तल इलैही तब्दीला, अल्लाह ताला आपको इससे बेहतरीन फायदा। देखिए, ये सारी जो खूबियां हैं ना, ये सारी चीजें जो थी, इनके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है?
जी
ऐसा नहीं है, मुराद ये है कि फर्ज अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने जो काम करना है उसका अजर अल्लाह जितना दे, और अजर को छोड़िए, अपने हिस्से का काम करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।